एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम अरबी अदब की, मतलब साहित्य की, दुनिया के एक ऐसे नगीने पर बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ सूडान बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ तैयब साले के शाहकार उपन्यास सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ की।
जी, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है उत्तर की ओर प्रवास का मौसम।
बिल्कुल, तैयब साले जो 1929 से 2009 तक रहे वो सूडान के लेखक थे, और उनकी खासियत ये थी कि उनका अपना तजर्बा, मतलब उनका अपना जीवन, जो सूडान के एक गांव वाद हामिद और लंदन जैसे बड़े शहर के बीच बटा हुआ था, वही उनके लेखन की जान बन गया।
हाँ, वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का खिंचाव, वो कश्मकश उनके शब्दों में उतर आई।
सही, और उनकी शैली भी अनोखी थी। वो पुरानी अरबी किस्सा गोई, मतलब कहानी कहने का जो पारंपरिक तरीका है, और यूरोप का जो नया लिखने का अंदाज था जिसे मॉडर्निज्म कहते हैं, उसे बड़े कमाल से मिला देते थे।
जी हाँ,
ये नॉवल जब 1966 में अरबी में छपा तो फौरन ही, मतलब एकदम से चर्चा का विषय बन गया।
हाँ, क्योंकि इसका अंदाज काफी बेबाक था, खासकर जो उसमें रिश्तों का चित्रण है और उपनिवेशवाद पर, समाज की अंदरूनी न्याय इंसाफियों पर जो तीखी नजर है, उसने कई लोगों को चौंकाया भी।
हाँ, थोड़ा विवादास्पद रहा शुरू में, लेकिन फिर अदबी दुनिया ने, साहित्यिक जगत ने इसके महत्व को समझा। 2001 में अरब लिटरेरी एकेडमी ने तो इसे 20वीं सदी का सबसे अहम अरबी उपन्यास करार दिया।
बिल्कुल, और कई लोग इसे जोसेफ कॉनराड की मशहूर किताब हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक तरह से जवाब भी मानते हैं, एक काउंटर नैरेटिव।
हाँ, जो कहानी को एक बिल्कुल अलग उलट नजरिए से देखता है। तो आज का हमारा मकसद है कि हमें इस उपन्यास की कहानी, उसके किरदारों का जो सफर रहा है, उसके जो गहरे विषय हैं, सवाल हैं, और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य में इसकी क्या जगह है, उसे समझने की कोशिश करें।
बिल्कुल, और कहानी की जो गांठ है वो खुलती है एक अनान नैरेटर से, मतलब कथावाचक जिसका नाम नहीं बताया गया है। वो कई साल इंग्लैंड में पढ़ाई करके सूडान अपने गांव लौटता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है एक बड़े ही रहस्यमय अजनबी से, मुस्तफ़ा सईद। और ये मुलाकात एक आईने की तरह बन जाती है। इसमें पहचान, विस्थापन और गुलामी के दौर की जो मनोवैज्ञानिक चोटें हैं, उनकी तस्वीरें उभरने लगती हैं।
और सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसान दो दुनियाओं के बीच, दो पार्टों के बीच पिसकर भी अपनी असलियत, अपनी पहचान बचाए रख सकता है? ये बड़ा सवाल है।
बहुत बड़ा सवाल। तो कहानी शुरू होती है कथावाचक से, 7 साल इंग्लैंड में गुजार कर लौटा है, डॉक्टरेट की है उसने वहां किसी छोटे मोटे अंग्रेज कवि पर।
हाँ, जैसे वो अपनी जड़ों से कटा नहीं, बस थोड़ी देर दूर रहा।
जी,
और उसके दिल में अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक तमन्ना है। वो गांव की सादगी, वो अपनापन ढूंढ रहा है जो शायद पीछे छूट गया है। उसे ऐसा लगता है कि वो जैसा गया था वैसा ही लौटा है, कि पश्चिम ने उसे बदला नहीं है। एक तरह का कह सकते हैं भोलापन है उसमें।
हाँ, एक भ्रम है कि मैं अपरिवर्तित हूँ।
बिल्कुल,
लेकिन गांव का ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। उसकी मुलाकात होती है मुस्तफ़ा सईद से।
अच्छा,
पहले तो लगता है कि कोई नया किसान है गांव में, आम सा, मगर फिर एक शाम बातों बातों में मुस्तफ़ा सईद बड़ी आसानी से, बड़ी रवानी से एक अंग्रेजी कविता पढ़ देता है।
अरे,
कथावाचक तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ये वो गांव नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था, या शायद उसकी अपनी नजर बदल गई थी।
हाँ, ये लम्हा तो बड़ा अहम है। ये उस कथावाचक के वहम को तोड़ता है कि दुनिया सीधी सादी है, जानी पहचानी है। उसके मन में सवाल उठता है, ये मुस्तफ़ा सईद कौन है, इसके पीछे क्या राज है?
जी,
और यहीं से उसका जुनून शुरू होता है मुस्तफ़ा की हकीकत जानने का। वो उसे अपने अंधेरे हमशक्ल, डार्क डोपलगैंगर की तरह देखने लगता है। और यहीं से उपन्यास का वो बुनियादी सवाल उठता है, क्या गुलामी के बाद की दुनिया में एक मुकम्मल, एक जुड़ी हुई पहचान, क्या वो मुमकिन भी है, या इंसान बस टुकड़ों में ही जीता है?
सही कहा आपने। और फिर धीरे धीरे वो राज खुलता है। मुस्तफ़ा सईद खुद अपनी कहानी बयान करता है कथावाचक को। उसका बचपन, वो कहता है, भावनाओं से बिल्कुल खाली था, माँ बाप से कोई लगाव नहीं। फिर काहिरा में उसकी जहानत, उसकी बुद्धि चमकी, और फिर वो लंदन पहुंचा अपने शब्दों में एक फातेह बनकर, एक विजेता।
विजेता? किस पर विजय पाने?
यही तो सवाल है। वहां उसने अपनी काबिलियत और अपनी कशिश का इस्तेमाल किया अंग्रेज औरतों के साथ रिश्ते बनाने में। एन हैमंड, शीला ग्रीनवुड, इसाबेला सिमोर, और ये ऐसे रिश्ते थे जिनका अंजाम बहुत बहुत बुरा हुआ। उसने बड़ी चालाकी से उन औरतों की जो पूरब को लेकर, मतलब ओरिएंट को लेकर, जो अजीब सी रोमानी सी ख्वाहिशें थीं, उनका फ़ायदा उठाया। वो उनके सामने वही अरब उथेलो का एक एग्जॉटिक रूप धर लेता था, शायद जिसकी उन्हें तलाश थी।
अच्छा, तो ये रिश्ते असल में मोहब्बत के नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ताकत का खेल था, ये गुलामी के जख्मों का एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, एक जहरीला बदला लेने का तरीका था। और अफसोस की बात यह है कि इन सब रिश्तों का अंत उन औरतों की खुदकुशी में हुआ।
ओहो, ये तो ये मुस्तफा के किरदार की जो पेचीदगी है उसे दिखाता है। मतलब उसके अंदर उपनिवेशवाद का जहर, उसका असर कितना गहरा था कि उसका गुस्सा, उसका दर्द इस शक्ल में बाहर आया।
जी,
इसे आप एक तरह का रिवर्स कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं, है ना, जहां वो उन्हीं के हथियार, जहानत, जबान, कशिश उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था।
हाँ, कह सकते हैं।
लेकिन ये बदला भी तो उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो खुद कहता है, मैं उथेलो नहीं हूँ, उथेलो एक झूठ था, मैं एक झूठ हूँ।
जी बिल्कुल, ये जैसे उसके अपने बनाए हुए नकाब और अंदर के खालीपन का एक स्वीकार है।
और उसका वो कहना कि मैं तुम्हारे पास एक विजेता के रूप में आया हूँ, एक वायरस जो यूरोप के खून में घुस गया है।
हाँ,
इससे साफ है कि उसका मकसद घुलना मिलना नहीं था, उसका मकसद एक दिमागी और जज्बाती हमला करना था।
पर इस हमले में क्या वो खुद शिकार नहीं बन गया? ये सवाल भी उठता है।
बिल्कुल सही सवाल है।
उसकी कहानी का अगला पड़ाव आता है जीन मॉरिस से उसकी शादी। जीन भी, वो भी वैसी आजाद ख्याल, बेचैन और शायद खुद को तबाह करने पे तुली हुई औरत थी।
अच्छा।
उनका रिश्ता जुनून और टकराव का एक अजीब सा संगम था। वो मुस्तफा के बनाए हुए किरदारों को मानने से इनकार करती थी, उसे आईना दिखाती थी। और इस बेचैन रिश्ते का अंत भी भयानक हुआ। एक रात मुस्तफा ने गुस्से और शायद एक अजीब सी मोहब्बत के पल में उसका कत्ल कर दिया।
कत्ल कर दिया?
हाँ, इस कत्ल के लिए उसे 7 साल की जेल हुई। छूटने के बाद वो जैसे गुमनामी की तलाश में कथावाचक के गांव वाद हामिदा पहुंचा। यहां उसने हुस्ना बिंद महमूद नाम की एक गांव की औरत से शादी की और एक आम किसान की जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा, जैसे अपने अतीत को कहीं दफन कर देना चाहता हो।
लेकिन क्या अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ता है?
नहीं छोड़ता। कुछ साल बाद नील नदी में जबरदस्त बाढ़ आती है और मुस्तफा सईद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है।
गायब मतलब?
कोई नहीं जानता, हादसा था या खुदकुशी, एक सवाल रह जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने कथावाचक के कंधों पर एक बहुत भारी बोझ डाल दिया था।
क्या?
उसने कथावाचक को अपनी बीवी हुस्ना और अपने 2 बेटों का कानूनी सरपरस्त, मतलब गार्डियन बना दिया था।
ओ, गोया अपने राज, अपनी विरासत, अपने गुनाहों का वारिस बना गया हो।
हाँ, कुछ ऐसा ही।
तो ये हैं किरदार, उलझे हुए, टूटे हुए, सब अपनी अपनी तलाश में। कथावाचक की बात करें तो उसका सफर कैसे देखती हैं आप? वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है?
कथावाचक की यात्रा एक तरह से भोलेपन से हकीकत की तरफ की यात्रा है। शुरू में वो खुद को गांव और पश्चिम के बीच का एक पुल समझता है, शायद कुछ हद तक खुद को खास भी समझता है। लेकिन मुस्तफा की कहानी और फिर गांव में जो कुछ होता है वो उसे जमीन पर लाकर पटक देता है। उसे एहसास होता है कि गांव की जो शांत सतह दिखती है उसके नीचे भी वैसी ही क्रूरता छिपी है। और उसकी अपनी पहचान पर भी पश्चिम का कितना गहरा असर है। वो उस पूरी पीढ़ी की तरह है जो गुलामी के बाद आजाद तो हुई लेकिन परंपरा और आधुनिकता के टुकड़ों को जोड़कर एक मतलब भरी पहचान बनाने के लिए जूझ रही है।
और मुस्तफा सईद, वो तो जैसे इस नॉवल का दिल भी है और अंधेरा कोना भी, क्यों?
हाँ, मुस्तफा सईद इस कहानी का सबसे दुखद और सबसे पेचीदा किरदार है। उसमें गजब की जहानत है लेकिन उतना ही गहरा गुस्सा और दर्द भी। और विडंबना देखिए, जिन चीजों ने उसे ताकत दी, उसकी अकल, उसकी जबान, वही उसके विनाश का कारण बनी।
हाँ।
वो खुद को खोखला आदमी, एक बीमारी का कीड़ा, एक झूठ कहता है। उसका पूरा वजूद जैसे उपनिवेशवाद के जख्म का एक जिंदा जागता निशान बन गया, एक ऐसा बदला लेने वाला जो खुद ही अपने बदले की आग में जल गया।
लेकिन इस कहानी में औरतें, खासकर हुस्ना बिंत महमूद, वो सिर्फ बेचारी शिकार नहीं है, उनमें एक अजीब सी ताकत भी नजर आती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, हुस्ना कोई मामूली औरत नहीं है। वो मुस्तफा की मौत के बाद खामोशी से जिंदगी गुजारना चाहती है, अपने बच्चों को पालना चाहती है। उसमें एक गरिमा है, एक आत्मनिर्भरता है। वो गाँव की उस रूह की तरह है जो आसानी से हार नहीं मानती।
लेकिन
वो गांव के मर्दों की बनाई रिवाजों और एक बूढ़े आदमी वाद रईस की हवस के बीच फंस जाती है। उसकी कहानी बाद में नॉवेल के दूसरे हिस्से का दिल दहला देने वाला केंद्र बन जाती है।
और कहानी में एक सुकून देने वाला किरदार भी है, कथावाचक के दादा हज अहमद। वो क्या दर्शाते हैं?
दादाजी,
हाँ,
वो जैसे उस पुरानी दुनिया का प्रतीक है जो अब खोती जा रही है। वो स्थिरता, इज्जत और जमीन से जुड़े जीवन की अलामत है। उनका जीना मरना गांव के रस्मों रिवाज, खेती बाड़ी और नील नदी के उतार चढ़ाव से जुड़ा है। वो उस सुकून और अपनेपन की तरह हैं जिसे कथावाचक और शायद मुस्तफा भी तलाश रहे थे लेकिन पा नहीं सके। उनका वो कहना कितना गहरा है, हम ऐसे लोग हैं जो अपने जज्बात जाहिर करने में खुले नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल एक मंदिर की तरह है। इसमें गांव की छुपी हुई रूहानी दौलत की एक झलक मिलती है।
और फिर है वाद रईस, एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार।
हाँ, वाद रईस गांव का वो बूढ़ा जिसकी नजर हुस्ना पर है। वो गांव की परंपरा के उस पहलू को दिखाता है जो दमनकारी है, जो औरतों को अपनी जागीर समझता है। उसका किरदार ये याद दिलाता है कि जुल्म सिर्फ उत्तर से, मतलब बाहर से ही नहीं आता, वो समाज के अंदर भी पनपता है। वो पितृसत्ता, पैट्रियार्की का चलता फिरता नमूना है।
तो कहानी आगे बढ़ती है और हुस्ना की त्रासदी सामने आती है। ये नॉवेल का एक बहुत दर्दनाक मोड़ है।
जी हाँ, बहुत दर्दनाक। गांव के बड़े बूढ़े, खासकर वाद रईस, हुस्ना पर दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालते हैं। वो साफ इनकार करती है, अपनी आजादी और बच्चों की खातिर।
और कथावाचक वो क्या करता है? वो तो उसका गार्डियन था।
कथावाचक कोशिश करता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेअसर रहती हैं। वो सोचता ज्यादा है, करता कम है। वो खुद अपनी उलझनों में फंसा हुआ है।
एक तरह की निष्क्रियता।
हाँ, और आखिर में गांव के लोग जबरदस्ती हुस्ना की शादी बूढ़े वाद रईस से करवा देते हैं।
ओह।
शादी की रात वो एक भयानक मंजर में बदल जाती है। हुस्ना अपनी इज्जत बचाने के आखिरी हताश कदम में वाद रईस को चाकू मार देती है और फिर उसी चाकू से खुद को भी खत्म कर लेती है।
हे भगवान, ये कत्ल और खुदकुशी ये कथावाचक को तो झिंझोड़ कर रख देती होगी।
बिल्कुल, उसके मन में गांव की जो एक साफ सुथरी पुरसुकून तस्वीर थी वो चकनाचूर हो जाती है।
उसे समझ आता है कि जिस वहशीपन से वो लंदन में मुस्तफा की कहानियों में मिला था, वैसा ही वहशीपन उसके अपने शांत गांव में भी मौजूद है।
जी, ये हादसा जैसे दिखाता है कि ना तो पुरानी परंपराएं बचाने आई, ना ही कथावाचक की नई सोच किसी काम आई। दोनों फेल हो गए।
सही।
इस हादसे के बाद कथावाचक हिम्मत करके मुस्तफा सईद के उस कमरे में जाता है जिसे उसने हमेशा बंद रखा था, मुस्तफा का सीक्रेट कमरा।
अच्छा, वही कमरा जिसका जिक्र था।
हाँ, और अंदर का नजारा उसे और भी हैरान कर देता है। वो कमरा सूडान में होकर भी सूडानी नहीं लगता। वो बिल्कुल एक अंग्रेजी लाइब्रेरी की नकल है। अंगीठी, अंग्रेजी किताबों से भरी अलमारियां और दीवारों पर मुस्तफा की उन यूरोपीय प्रेमिकाओं की तस्वीरें।
क्या बात है।
ये जैसे एक झूठी बंटी हुई जिंदगी का स्मारक था, सूडान के दिल में इंग्लैंड का एक ठंडा बेगाना टुकड़ा।
इस कमरे का मतलब तो बहुत गहरा है ना, है ना?
ये मुस्तफा की टूटी हुई शख्सियत का आईना है।
बिल्कुल, उसकी वो नाकाम कोशिश कि वो अपनी जिंदगी के दो हिस्सों, सूडानी और यूरोपीय को अलग अलग रख सके, ये वो जगह है जहाँ उसकी तथाकथित जीत और उसका झूठ दोनों एक साथ कैद हैं।
हाँ, इस सब से गुजरकर कथावाचक को लगता है जैसे मुस्तफा का भूत, उसका साया उस पर हावी हो रहा है। वो एक गहरे संकट में घिर जाता है। वो भागकर नील नदी के किनारे जाता है, वही नदी जिसमें मुस्तफा गायब हुआ था, और खुद को पानी में फेंक देता है।
ओह।
उसे लगता है वो डूब रहा है, नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच फंसा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी जिंदगी में दो संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ है।
लेकिन बिल्कुल आखिर में कुछ बदलता है।
हाँ, जब उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है, वो एक चुनाव करता है।
क्या?
वो चीखता है, मदद मदद,
हेल्प हेल्प।
जी, ये सिर्फ जान बचाने की पुकार नहीं लगती, ये मुस्तफा सईद की खामोशी, उसकी हार मान लेने वाली सोच के खिलाफ जिंदगी, जुड़ाव और लड़ते रहने का चुनाव है।
नॉवल का अंत धुंधला जरूर है, अस्पष्ट है, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी है, तबाही के सामने जीने की ख्वाहिश।
हाँ बिल्कुल।
चलिए अब इस उपन्यास के जो बड़े पैगाम हैं, जो मुख्य विषय हैं, उन पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये उपनिवेशवाद के जहनी जख्मों की बात।
हाँ ये बहुत अहम है। साले दिखाते हैं कि गुलामी सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं होती, वो रूह पर भी कब्जा कर लेती है। एक ऐसा वायरस जो इंसान की सोच, उसके जज्बात को बीमार कर देता है। मुस्तफा सईद की पूरी जिंदगी इसी का सबूत है। उसका बदला लेने का जज्बा इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को ही तबाह कर लेता है और अपने आसपास के लोगों को भी।
और इसी से जुड़ा है पहचान के बिखराव का मसला, है ना? फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी।
जी, कथावाचक और मुस्तफा दोनों दो दुनियाओं के बीच अटके हुए हैं। पश्चिम की तालीम उन्हें अपनी जड़ों से कुछ दूर कर देती है, लेकिन उनकी जड़ें उन्हें पश्चिम में पूरी तरह घुलने मिलने भी नहीं देती।
और मुस्तफा का वो खुफिया कमरा, वो इसी बिखरी हुई चेतना, इसी अधूरेपन की सबसे बड़ी निशानी है।
बिल्कुल।
अरे भी पूरब और पश्चिम को देखने के जो बने बनाए सांचे हैं, स्टीरियोटाइप्स, उन्हें भी तोड़ा है।
हाँ बिल्कुल तोड़ा है। वो ये नहीं कहते कि पश्चिम बुरा है और पूरब अच्छा या इसका उल्टा। मुस्तफा के तजुर्बे लंदन को भी एक अंधेरी, जज्बात से खाली जगह की तरह दिखाते हैं। दूसरी तरफ सूडान का गांव, जिसे कथावाचक पहले बहुत पाक साफ समझता था, वहां भी मर्दों का जुल्म और वहशीपन है जैसा हुस्ने के साथ होता है। नॉवेल कहता है कि अच्छाई, बुराई, जुल्म और रहम, ये हर जगह हैं, अंदर भी बाहर भी।
जी।
और फिर वो विषय हैं जिस्मानी रिश्ते, ताकत और बदला, ये भी कहानी में बार बार उभरते हैं। मुस्तफा अपनी कशिश को गुलामी का बदला लेने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो यूरोपीय औरतों की एक्जॉटिक ख्वाहिशों को समझता है और उनका फायदा उठाता है।
ये ताकत का एक बहुत ही खतरनाक खेल है।
हाँ, और यही ताकत का भूखापन एक अलग शक्ल में हमें वाद रईस में भी दिखता है, जब वो हुस्ना पर अपना हक जताता है।
और आखिर में ये नॉवल जिसे इशारा करता है कि न तो आंख मूंद कर नई चीजें अपनाने से भला होगा, न ही पुरानी सड़ी गली रिवायतों से चिपके रहने से। क्यों?
हाँ, ऐसा ही लगता है। कथावाचक की मॉडर्न सोच होसना को बचा नहीं पाती और गांव की परंपराएं जालिम साबित होती हैं। पढ़ने वाला वाकई सोचता रह जाता है कि क्या इन दो किनारों के बीच कोई सही रास्ता है भी या नहीं।
उपन्यास का लिखने का अंदाज भी इसकी बातों को और गहरा करता है।
हाँ, कथावाचक की जबानी है कहानी, लेकिन सीधी नहीं चलती। ये वक्त और जगह में आगे पीछे होती रहती है, टूटी फूटी सी, जैसे किरदारों की बिखरी हुई पहचान को ही दिखा रही हो।
और बीच में मुस्तफा का वो लंबा किस्सा आता है, कहानी के अंदर कहानी, ये पुरानी अरबी दास्तान गोई की याद दिलाता है।
जी।
और निशानियां, मतलब सिंबल्स भी कमाल के हैं। नील नदी।
हाँ, नील नदी जिंदगी, वक्त, इतिहास की धारा है, जिंदगी देने वाली भी और तबाह करने वाली भी, और आखिर में जीने और मरने के बीच आजमाइश की जगह।
और मुस्तफा का बंद कमरा,
वो उसकी टूटी शख्सियत, उसके झूठ का गढ़।
और उत्तर दक्षिण,
ये सिर्फ दिशाएं नहीं, ये यूरोप गुलामी, ठंडी अक्ल, बनाम सूडान रिवायत, अपनेपन के इशारे बन जाते हैं।
ये नॉवल दूसरी किताबों से भी बात करता है, इंटरटेक्सचुअलिटी जिसे कहते हैं, खासकर कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस और शेक्सपियर के ओथेलो से।
जी हाँ, ये हार्ट ऑफ डार्कनेस के नजरिए को पलट देता है, और मुस्तफा सईद वो ओथेलो का एक बहुत पेचीदा उल्टा रूप है। वो यूरोपियन चालाकी का शिकार नहीं बनता, बल्कि मूर होने की छवि का इस्तेमाल यूरोपियनों को फंसाने के लिए करता है।
और भाषा की तस्वीरें, बिंब विधान जिसे कहते हैं, साले सूडान के मंजर को जैसे जिंदा कर देते हैं, चंदन की महक, धूप की तपरिश, खजूर के पेड़।
हाँ, और उसके सामने रखते हैं लंदन की ठंडी, बनावटी, उदास तस्वीरें। भाषा का ये जादू नॉवल के गहरे सवालों को महसूस करने लायक बना देता है।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास हमें सिखाता है कि इतिहास के जख्म कितने गहरे और कितने निजी हो सकते हैं। पहचान का संकट सिर्फ बाहरी सांस्कृतिक टकराव नहीं, बल्कि एक अंदरूनी कश्मकश भी है जो रूह तक उतर जाती है।
याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अपने समाजों के अंदर बैठे जुल्म के ढांचे, जैसे कि मर्दों की बनाई व्यवस्था, पितृसत्ता के खिलाफ भी लड़नी पड़ती है।
हाँ,
और कथावाचक की वो आखिरी चीख, मदद,
वो सिर्फ अपनी जान बचाने की गुहार नहीं, बल्कि नाउम्मीदी के अंधेरे में जिंदगी को चुनने, लड़ते रहने की हम सबकी साझी इंसानी ख्वाहिश का प्रतीक है।
बिल्कुल।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।